Market Mantra. Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Amit Goyal.
Namaskar, Market Mantra कार्यक्रम में आपका स्वागत है. आज के अंक में देश-विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ-साथ शेयर बाजार की हलचल पर एक नजर डालेंगे और चर्चा करेंगे. चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक पुनीत जैन. पुनीत, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
धन्यवाद अमित.
सबसे पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर, तो अंग्रेजी में हेडलाइन के साथ अर्जुन.
डोमेस्टिक बेंचमार्क इंडिसीज शेड ऑलमोस्ट 1%. सेंसेक्स एंड्स बिलो 79,900 मार्क व्हाइल निफ्टी क्लोजेस एट 24,363. कैबिनेट अप्रूव्स 30,000 करोड़ रुपीज फॉर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज टू कंपनसेट फॉर लॉसेज इन डोमेस्टिक एलपीजी. एंड इंडियाज लॉजिस्टिक कॉस्ट विल ड्रॉप टू 9% बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, सेज यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी.
आर्थिक सुर्खियों में घरेलू शेयर सूचकांकों में लगभग 1% की गिरावट. सेंसेक्स 79,900 से नीचे दर्ज. निफ्टी 24,363 के स्तर पर बंद. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने घरेलू एलपीजी के नुकसान की भरपाई के लिए सरकारी तेल कंपनियों को 30,000 करोड़ रुपए की सहायता को मंजूरी दी. और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस वर्ष के अंत तक भारत में लॉजिस्टिक लागत घटकर 9% रह जाने की उम्मीद जताई. कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, नजर डालते हैं शेयर बाजार पर. घरेलू शेयर सूचकांकों में आज लगभग 1% की गिरावट रही. अमेरिका द्वारा भारतीय आयात पर 50% शुल्क और विदेशी संस्थाओं द्वारा बिकवाली के से बाजार में गिरावट रही. बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज लगभग 1% की गिरावट से 765 अंक लुढ़क कर 79,858 के स्तर पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 1% के नुकसान से 233 अंक गिरकर 24,363 के स्तर पर बंद हुआ. लगातार छठे सप्ताह बाजार में गिरावट का माहौल रहा. बीएसई मिड कैप सूचकांक में 1.6% और बीएसई स्मॉल कैप सूचकांक में 1% गिरावट दर्ज हुई.
डोमेस्टिक बेंचमार्क इंडिसीज क्लोज्ड ऑलमोस्ट 1% डाउन टुडे एज इन्वेस्टर सेंटीमेंट टुक अ हिट आफ्टर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप announced doubling tariffs to 50% on Indian imports. Continued foreign fund outflows also added to market woes. Both the 30-share BSE Sensex as well as Nifty 50's NSE closed 0.95% lower from the previous close. Sensex slipped 765 points to settle at 79,858, while the NSE ended the day at 24,363, down 233 points. This was a sixth straight session weekly loss for the benchmarks. Broader markets suffered bigger losses. The mid-cap index closed 1.56% down and the small-cap index shed 1.03%.
सेंसेक्स पैक में केवल 5 कंपनियों को छोड़कर बाकी सभी में गिरावट रही. गिरावट वाले शेयरों में भारतीय एयरटेल 3.4%, टाटा मोटर्स 2.2% और कोटक बैंक 2.1% प्रमुख रहे. हालांकि एनटीपीसी 1.4%, टाइटन 1.3% और बजाज फाइनेंस 0.3% की बढ़त बनाने में कामयाब रहे.
इन द सेक्टोरल इंडिसीज एट द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑल 21 सेक्टर्स क्लोज्ड इन द रेड जोन. Realty was the biggest loser, shedding 2.09%, followed by telecommunications, which fell by 1.83%. Metal sector slipped 1.82%, while consumer durables lost 1.68%.
अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 5 पैसे की मजबूती से 87.66 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर रहा. डॉलर इंडेक्स 98.3 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया. पुनीत, बाजार की दशा और दिशा, क्या अमरीकी शुल्कों का असर अब गहराने लग गया है? और चूंकि लगातार छठा सप्ताह है जब कहीं ना कहीं भारतीय बाजार पूरी तरह से गिरावट के ही फेर में है, बाजार में हर दिन उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा रहता है, क्या माना जाए कि अभी बाजार की जो अंतरधारणा है वो मजबूत होती हुई नजर नहीं आ पा रही? क्योंकि हर दिन नई भौगोलिक और वैश्विक परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं वो कहीं ना कहीं बाजार के विश्वास को डिगा देती है.
बिल्कुल अमित, अभी जो बाजार की दिशा है वो काफी कमजोर है. और जैसे अर्जुन ने बताया कि छठा लगातार सिक्स्थ कंसेक्यूटिव वीक है जबकि स्टॉक मार्केट में हमने फॉल देखा है. और देखिए अगर हम पिछले 6 सप्ताह को देखें तो 2-3 बातें हैं जो काफी बाजार को प्रभावित कर रही हैं। सबसे पहला जो कॉर्पोरेट रिजल्ट्स आए पिछले तिमाही के, हमने देखा कि वहां पर कंपनियों का प्रदर्शन उम्मीद से थोड़ा कमजोर रहा और इससे लगता है कि थोड़ा जो पुल बैक आ रहा है इकोनॉमी के अंदर, एज इट इज इकोनॉमी में थोड़ा प्रेशर है। साथ में हमने देखा जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है और अब जो टैरिफ सिचुएशन भारत के लिए एक परेशानी का सब्जेक्ट हो सकती है, वहां पर हम स्लो डाउन देख रहे हैं। तो कई सारे फैक्टर्स हैं, प्लस हम देख रहे हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर सप्लाई भी आ रही है। हम देख रहे हैं ब्लॉक डील में प्रोमोटर्स जो है कंपनीज के, वो अपने शेयर्स काफी बड़े पैमाने पर बेच रहे हैं और IPOs बहुत आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर बाजार में जो डाउनवर्ड प्रेशर है स्टॉक प्राइसेस पर वो काफी ज्यादा है अभी, और मुझे लगता है कि ये थोड़ा समय और चलेगा। तो आगे मुझे बहुत उम्मीद नहीं है कि यहां से कोई बड़ा बाउंस बैक आए, थोड़ा टेक्निकल रिबाउंड आ सकता है, पर बाजारों में मुझे लगता है आने वाले समय में थोड़ी कमजोरी रहेगी।
क्या बाजार का भरोसा कहीं ना कहीं डगमगा गया है या बाजार के भरोसे को स्पार्क देने के लिए कोई अभी उस तरह की कोई कड़ी नहीं मिल पा रही है?
अमित देखिए, हमें इस बाजार की जो सो कॉल्ड कमजोरी है इसको देखना पड़ेगा पिछले कई वर्षों के कॉन्टेक्स्ट में, और पिछले 3-4 वर्षों से बाजारों में बहुत तेजी रही, निवेशकों को बहुत मुनाफा भी आया, प्रॉफिट उन्होंने, स्टॉक्स के प्राइसेस बहुत ऊपर हैं, वैल्यूएशंस बहुत ऊपर हैं। तो मुझे लगता है कि ये कंसोलिडेशन भी है, करेक्शन भी है, और कुछ हद तक जो इन्वेस्टर्स हैं जो उन्हें एक ऐसा विश्वास हो गया था कि स्टॉक मार्केट सिर्फ ऊपर ही जाती है और वैल्यूएशंस ऐसे बढ़ती रहेंगी, मुझे लगता है रियलिटी चेक है। थोड़ा निवेशकों को भी प्रैक्टिकल होना पड़ेगा और ये जानना पड़ेगा हमें कि मार्केट्स की जो वैल्यूएशंस है वो बहुत ज्यादा रिच है।
पुनीत, यू नो योर कमेंट्स अबाउट द टेक्निकल मूवमेंट्स टुडे, बिकॉज द मार्केट फेल बाय 765 पॉइंट्स एंड the Sensex closed at 79,858. And the reason I'm saying this is because the low was 79,776. It then went up to 80,478. Then it came down again. And clearly there was profit booking as well. You're mentioning about how the large company, their promoters have been selling their equity shareholding, like Airtel that you mentioned earlier. But incidentally, in the background of all of this, FIIs and DIIs were the net buyers in the market today. So who did all the profit booking?
So Arjun, what we have seen lately is that, first of all, FIIs, which have been buying and selling in the cash market, but broadly in the derivatives market, they have been big sellers. There's a very large short position built by foreign investors in the derivatives market, which is a matter of concern. Secondly, I think the investors in HNI category, the high net worth individual investors, people who have really pumped in a lot of money in the markets in the last many years, and that includes the promoters, like I mentioned, they have been big sellers in this market. They've been taking money off the table. If I look at last three, four years, many stocks have gone up by 5 to 10 times. And even today, they're ruling at about 5 to 6 times in many cases. And I think there, because confidence is a little bit shaken now, they would like to take money off the table. So big investors, the HNIs, the ultra HNIs, I think they are the big sellers in this market. Retail investors, if you ask me, they continue to pour their money into the market through small purchases, through mutual funds. That money flow continues. But I think it is the HNIs, the large individual investors, who are pulling money out of the market.
Puneet, लेकिन इन सारी घटनाक्रम के बीच में अगर जैसे आज स्टेट बैंक के भी रिजल्ट आए, LIC के रिजल्ट्स भी आए, BSE के रिजल्ट्स भी आए, वहां से कोई ये माना जा सकता है कि वहां से कुछ बहुत अच्छे या बहुत उम्मीद से ज्यादा बेहतर नतीजे नहीं थे, लेकिन निराशाजनक भी नतीजे नहीं रहे, ये कहने के पर्याप्त कारण हैं। ऐसी स्थिति में जिस तरह से आप बात कर रहे थे, क्या एक आम निवेशक को या एक सतर्क निवेशक को थोड़ा और इंतजार करना चाहिए कि वैल्यूएशंस और अट्रैक्टिव हो सकती हैं जिसमें कि वो बाजार में प्रवेश करे, अगर सीधे प्रवेश करना है तो?
बिल्कुल अमित, तो जैसा आपने कहा कि आज LIC के नंबर्स आए, कल नंबर्स आए थे, वो अच्छे नंबर्स थे, और बल्कि LIC का शेयर सुबह सुबह काफी अच्छी बढ़त के साथ खुला भी,
4% के साथ
ऊपर भी खुला था। और LIC एक बहुत मजबूत कंपनी है भारत की, और उसका प्रबंधन भी बहुत अच्छा है। उसके बावजूद भी हमने देखा कि बाद में उसमें प्रॉफिट बुकिंग हुई और वहां पर फिर थोड़ा पुल बैक आया। इसी प्रकार से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की आपने बात करी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के जो शेयर्स, वहां भी प्रदर्शन उम्मीद से बहुत बेहतर आया, नंबर्स वेरी गुड, उसके बावजूद भी वहां पर हमने गिरावट देखी। तो अब हम ये देख रहे हैं कि जहां पर जिन कंपनियों में अच्छे नंबर नंबर्स भी आ रहे हैं, वहां भी शेयर प्राइसेस ऊपर सस्टेन नहीं करते हैं, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आती है। इसका मतलब यही है कि जो, जैसे मैंने पहले कहा कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बड़े निवेशक हैं, HNIs हैं, वो अब उनको लगता है कि भाई ये अब इस बाजार में थोड़ा पैसा हमें निकालना है, और वहां पर वो थोड़ा सेलिंग कर रहे हैं और प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। और जैसे आपने कहा, तो मैं ये कहूंगा कि स्मॉल इन्वेस्टर को भी थोड़ा रुकना चाहिए, थोड़ा इट इज टाइम टू टेक सम मनी ऑफ द टेबल एंड, और थोड़ा एकदम हर रोज वहां पर बाइंग करें, निवेश करें, वो शायद नहीं रहना चाहिए।
वी डिस्कसिंग अबाउट सेंसेक्स एंड निफ्टी परफॉर्मेंस विद आवर एक्सपर्ट पुनीत जैन। पुनीत, वंस अगेन गुड टू हैव यू ऑन द प्रोग्राम। मेटल सेक्टर स्लिप्ड बाय 1.82% एंड वी बीन टॉकिंग अबाउट दिस विद अ वैरायटी of opinion holders, and they're all saying that this is because of the tariff impact of President Donald Trump imports. 50% whether with or without baseline tariffs, is one of the highest in the world. You're comparing this to Brazil, who are also being imposed 50% tariff as of now. So how do you see metal companies whose earnings depend upon exports to the U.S., base metals, you're talking about aluminium, you're talking about steel. How do you see metal prices, their valuations bouncing back, and how dependent is the tariff policy of the US on this?
So, Arjun, there are two factors which are really affecting the sector. One, of course, is the direct impact of tariffs on exports of Indian metals to US. We were quite substantial exporters of copper, and some in some many cases steel also. Steel products were being exported to USA. That's a direct export of metals. We are going to take a hit there. I'm sure those exports will be hit very badly. So that was reflected. Secondly, a large number of industries which utilize the metals, for example, auto components. So we also export auto components in a very big way to the US market, and that is going to be affected. So it is not just the metal sector directly which exports to the US. The user industries which utilize the metal, even they are affected. And so I think there will be a cascading effect of tariffs over various industries over a period of time. Even the capital goods sector, the machinery sector, that has also got hit. So clearly in the short term, markets are worried. We'll of course know the extent of the impact in the next 6 months. But I think immediately, sentimentally, markets are really taking it negatively.
Puneet, ये जो अमरीकी शुल्कों की बात कर रहे हैं, हालांकि फिलहाल इस तरह के सिर्फ घोषणाएं हैं, क्योंकि अभी आने वाले दिनों में उसकी इम्प्लीमेंटेशन होने की बात है। क्या इस बीच में एक विशेषज्ञ के तौर पर आपका आकलन क्या ऐसा कहता है कि ये जो भी चीजें चल रही हैं कहीं ना कहीं एक लॉजिक कंक्लूजन के तहत पहुंच जाएंगे?
बिल्कुल अमित, देखिए मुझे लगता है कि ये सिचुएशन बदलेगी अभी। और हालांकि 25% जो एक्सपोर्ट टैरिफ था, जो इंपोर्ट टैरिफ है अमेरिका में, वो लागू हो गया है 1 अगस्त से, और जो 25% की हम बात कर रहे हैं वो 27 अगस्त से लागू होगा। और अभी काफी समय है उसके लिए कि नेगोशिएशंस भी हो सकती हैं, सिचुएशन बदल भी सकती है। और काफी आप देखिए तो पॉलिटिकल लेवल पर बहुत बड़े बदलाव हर रोज आते हैं, हम देखते हैं मीटिंग्स हो रही हैं, देयर इज अ टॉक ऑफ ट्रंप पुतिन मीटिंग आल्सो हैपनिंग, भारत और चाइना की बातचीत चल रही है। तो कई प्रकार के, कई लेवल्स पर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बदल रही है, बहुत रैपिडली चेंजिंग सिचुएशन है। तो ये कहना मुश्किल है कि 20 दिन के बाद या 21 दिन के बाद क्या होगा, लेकिन एज ऑफ टुडे अगर हम बात मान के चलें, और 25% लग चुके हैं और 25% और लग सकते हैं, संभावना है 20 दिन के बाद, तो मुझे लगता है कि एक चिंता का विषय जरूर है।
In more news, U.S. House Foreign Affairs Committee Dems today warned that President Donald Trump's actions risk the carefully developed U.S.-India relationship. U.S. Representative Gregory Meek said that any concerns should be addressed in a respectful way. In a post on X, House Foreign Affairs Committee Dems said Trump's latest tariff tantrum risks years of careful work to build a stronger U.S.-India partnership, deep strategic, economic and people-to-people ties. He added that the concerns should be addressed in a mutually respectful way, consistent with the country's democratic values. Speaking about democracy and the values of equality, which is also enshrined in our constitution, of which the architect is Dr. Ambedkar. Puneet, tell us about China, on whom 30% tariff has been imposed by the US after negotiations, and they're also a key buyer of Russian oil, but 50% has been imposed on India. So by this 25% increase on the tariff, what is Trump trying to achieve in the short term?
So it's very difficult to read into President Trump's mind, but clearly he has singled India out in an unfair manner to play geopolitics. So I don't think it is all about Russian oil or energy, because Europe and China import much more of Russian energy than India does, and yet he has singled out India. So there seems to be more at play than merely the economics of energy. Clearly, I think it is unfair. The world recognizes it. Everybody knows it. And of course, but you, many people would like to remain silent, many international players. However, many experts have said that it is not right for America to burn the relationship with India like this. Of course, jury is still out on how this is going to play out. But yes, it's quite unfair. And I think for India, it is an opportunity to discover itself, you know, to some extent, to reinvent the relationship. So let's see how it works out.
क्या इस आपदा को भारत में अवसर बदलने के पर्याप्त कारण कर सकता है, खासतौर पे घरेलू खपत बढ़ाकर या घरेलू परचेसिंग पावर बढ़ाकर?
देखिए, हमें इसका जरूर लॉन्ग टर्म असर पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में इसका जो नेगेटिव असर है वो हमें झेलना पड़ेगा।
चलिए नजर डाल लेते हैं शेयर बाजार पे। एशियाई बाजारों में जापान के अलावा सभी शेयर बाजारों में गिरावट दर्ज हुई। हांगकांग का हैंगसेंग 1.2%, दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.6%, सिंगापुर का स्ट्रेट टाइम सूचकांक 0.4% और चीन के शंघाई कंपोजिट सूचकांक में मामूली गिरावट दर्ज हुई। हालांकि जापान का निकेई 1.7% की बढ़त बनाने में कामयाब रहा। उधर यूरोपीय बाजारों के शुरुआती रुझानों में मिला जुला रुख रहा। जर्मनी और फ्रांस के शेयर सूचकांक 0.2% तक की बढ़त नजर आई, जबकि लंदन के शेयर बाजार में मामूली गिरावट दर्ज हुई।
पुनीत, the US European Union trade deal is about 15% tariffs, import tariffs that the EU will have to pay when they export goods to America. And the caveat, the warning with that is that since India has been buying Russian oil and reselling through refined products to the EU, that is something that they're keeping a close watch on. So what kind of warning is Trump giving to the EU regarding trade with India?
So, President Trump, of course, has now, I would say, pressed all buttons when it comes to tightening the noose around India's international trade. And that appears to be the case. So, they're not leaving any stone unturned to really make it difficult for us in the short term. Of course, the European Union itself has its task cut out, because they earlier had almost zero tariffs going for exports to America. Now they're going to face 15% tariffs. So clearly, Arjun, I think the sum and total of this whole action appears to be that in days to come, we will see a significant drawdown in international trade. You will see that consumption internationally will go down. And interestingly, whenever you, let's say, they try to block out India, it will have cascading effect on other countries also, because India sources its raw materials from other countries. So if our exports go down, it is going to affect other countries which are supplying to us. So consumption never works in a single way. No, it has many implications. So I think all that will play out, but it will happen in next 6 months.
What has Japan done to secure its US-Japan a trade deal? They had earlier retaliated by selling U.S. treasuries across the board, which saw the yield actually go up. So what is Japan's position right now? Their stock market seems to be quite stable along with the exchange rate.
So Japan has chosen to go for a short-term truce. They've accepted some tariffs on Japanese exports to USA. Plus, they have committed to invest $600 billion in U.S. economy in the coming years. So again, this $600 billion investment commitment is something that is being trumpeted by President Trump. But the truth is that Japan, when that investment will be made, who will profit from those investments, those are still big question marks. I think it's just a big number being bandied out. But Japan may not actually make those investments anytime soon.
Well, let's have a look at the U.S. market now. U.S. markets turned in a mixed performance on Thursday, following the latest tariff-related announcements by President Trump. The tech-heavy NASDAQ composite rose 0.35% to close at a fresh record high of 21,242.7. On the other hand, the S&P 500 ended little change, down 0.08% at 6,340, while the Dow Jones Industrial Average slipped 0.51% to settle at 43,968.64. We were reading the U.S. market's story on their NASDAQ Composite Index, S&P 500, and the Dow Jones Industrial Average, which have seen a minor correction, with our expert, Puneet Jain. Puneet, just from the macro economic standpoint, the US has shown an improved balance of trade figures now, especially since the tariffs have been imposed, fewer imports into the US economy, they're exporting more as well, and the yield on the treasuries, both short, medium and long term, have actually come down, showing that they have a better control over their debt securities issued and what they're going to give as yields to any investor. What is this telling you about the US market right now and the presidency and the tariff policy?
So Arjun, basically if you look at the leading indicators in USA, they're mixed. Because like you mentioned, the yields have gone down, but employment has also gone down. In fact, almost zero new jobs are now being added in the USA. The GDP growth numbers we'll get later. Balance of trade you mentioned. See, if you reduce imports, automatically it is not as if the economic activity has improved or US exports have gone up. The truth is that the imports have come down, which means consumption in USA has gone down, which would really affect the GDP growth going forward. So this is not a win for USA.
And private consumption is a major part of the GDP.
Absolutely. And US particularly is a consumption-driven economy. So my sense is that as imports go down and consumption goes down in USA, you will see a significant hit to the GDP numbers going forward. So my guess is that we will see the negative implications. See, all these numbers are purely one-sided numbers. When we see the totality of this situation, we will see that US economic growth has suffered significantly.
Puneet, very briefly, the US dollar index is at 98.31. Apart from that, you also have the employment of 73,000 for the month of July, which has been challenged by the US government itself.
Absolutely. So dollar index, if you see, it had rebounded to about 100 plus very recently, and now it has retreated again. So clearly, the markets are telling us that there is less strength in the US economy.
Let's now move on to news from the domestic economy. Cabinet briefing specifically. The government has approved compensation amounting to 30,000 crore rupees to the three public sector oil marketing companies, Indian Oil Corporation Limited, BPCL and HPCL. This is among a slew of decisions taken by the Union Cabinet today. Briefing the media in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the step related to the oil companies has been taken for the under-recoveries incurred on the sale of domestic LPG and underlines the government's commitment to protect consumers from volatility in global energy markets while maintaining the financial health of oil marketing companies.
कैसे हमारे मिडिल क्लास परिवारों में एलपीजी गैस अब कम से कम दाम पे मिले उसके लिए 30,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी आज अप्रूव हुई है हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के बेनिफिट में जाएगी और गैस के प्राइसेस जिस तरह से आज की जियोपॉलिटिक्स है उस जियोपॉलिटिक्स में गैस के प्राइस ऊपर नीचे होते हैं मध्यम वर्गीय परिवारों को कैसे हम इंसुलेट करके रखें उनके ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े ये सोच के ये फैसला लिया गया.
The cabinet has also approved the continuation of targeted subsidies for the Pradhan Mantri Ujjwala Yojana for the year 2025-26 with the estimated cost of over 12,000 crore rupees. The government will provide a targeted subsidy of 300 rupees per 14.2 kilogram cylinder for up to 9 refills per year. Over 10 crore 33 lakh households have been benefited under the Ujjwala scheme. The other decisions taken today include nod for budgetary support of 4,200 crore rupees for multidisciplinary education and research improvement in technical education scheme, construction of a 4-lane Marakkanam to Puducherry highways in Tamil Nadu, and approval of 4 new components under the existing central sector scheme of special development packages for Assam and Tripura.
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने विश्वास व्यक्त किया है कि इस वर्ष के अंत तक भारत की लॉजिस्टिक लागत घटकर 9% रह जाएगी. श्री गडकरी ने कहा कि लॉजिस्टिक लागत में यह कमी से देश के निर्यात क्षेत्र को व्यापक बढ़ावा देगी, जिससे निर्यात में 1.5 गुना तक की वृद्धि होने की संभावना है. पुनीत, जो आज केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय है और साथ में इस तरीके की लागत, क्या भारत सरकार अमरीकी शुल्कों के दबाव के कारण ही या दूसरे कारणों से भी अपनी घरेलू खपत, जिसकी मैंने शुरुआत में भी जिक्र किया था, घरेलू खपत बढ़ाने के साथ साथ लोगों की परचेसिंग पावर को भी इंटैक्ट या बढ़ाना चाहती है, जैसे कि हम अपनी घरेलू खपत के माध्यम से इन तरीके के जो बाहरी कारण हैं उनको हम कंज्यूम कर सकें या ऑब्जर्व कर सकें?
देखिए अमित, जो भारत की जो अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें, हम अब कहते हैं कि एक्सपोर्ट्स पर असर आ सकता है, एक्सपोर्ट्स पर असर आने का मतलब क्या है कि हमारे जीडीपी ग्रोथ जो है उस पर असर आ सकता है, तो उसके कई और तरीके हैं। जो एक्सटर्नल सेक्टर, एक्सपोर्ट्स इज एक्सटर्नल सेक्टर, लेकिन अगर अंदरूनी जो हम खपत है, आपने जो कहा बिल्कुल सही बात है, अगर उसको बढ़ाते हैं हम तो उस लॉस को हम कॉम्पनसेट कर सकते हैं। तो भारतीय सरकार को जो भारत के चैलेंजेस हैं उनको मीट करने के लिए जो इंटरनल रिसोर्सेज है वो हमें बेटर करनी पड़ेंगी। इसका मतलब जो
कि मध्यम वर्ग को अगर वो गैस की सब्सिडी देते हैं तो उससे बहुत बड़े बहुत सारे परिवारों को राहत मिल जाएगी,
आराम मिलता
है, गरीब परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत
और यहाँ पर
मिल
नौकरी। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट करते हैं, रेलवेज में करते हैं, सड़क पे करते हैं, तो आपको यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जो अफेक्ट हो सकती है दूसरे सेक्टर्स में उसको यहाँ पर आप
एक बहुत अच्छी चीज ये भी है कि टेक्निकल एजुकेशन के लिए सुधार के लिए तकरीबन 4,200 करोड़ रुपए की भी सहायता है, जिसमें हमारे को हमारी जो वर्क फोर्स है उसकी टेक्निकल कैपेबिलिटी को और इंक्रीज करना।
बिल्कुल, रीस्किलिंग की बात हम बार बार करते हैं और ये बहुत जरूरी है कि हम ऐसा करें। तो हम डोमेस्टिक कंजम्पशन को यदि बढ़ावा देते हैं आने वाले समय में तो भी हम जो प्रेशर्स हैं उनको कम कर सकते हैं।
News from the crude oil market. International crude oil prices edged higher today. Brent crude was up 0.6% at $66.83 per barrel, while WTI crude was trading 0.47% higher at $64.18 per barrel. And reports last came in very interesting right now because India is importing 1.79 million barrels per day from Russia, and the Urals oil barrel is about 10% lower than the international prices. Will India cave in to Trump's demand, or what is going to happen right now with the second set of tariffs?
So Arjun, it's very difficult because it's complex geopolitics, but my guess is that India is well positioned to face this challenge, and even if we have to import from other countries more, I think we can afford it at this level.
सराफा बाजार में सोना 0.3% की मजबूती से 1,02,130 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर रहा, जबकि चांदी मामूली गिरावट से 1,15,520 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज हुई।
In the Indian bullion market, 24 carat gold was trading 0.33% up at 1,02,130 rupees per 10 grams, while silver was trading 0.07% down at 1,15,520 rupees per kilogram a short while ago.
पुनीत, कार्यक्रम में आने और चर्चा के लिए धन्यवाद।
धन्यवाद।
और अब चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर।
डोमेस्टिक बेंचमार्क इंडिसीज शेड ऑलमोस्ट 1%, सेंसेक्स एंड्स बिलो 79,900 मार्क, व्हाइल निफ्टी क्लोजेस एट 24,363। कैबिनेट अप्रूव्स 30,000 करोड़ रुपीज फॉर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज टू कंपनसेट फॉर लॉसेज इन डोमेस्टिक एलपीजी। एंड इंडियाज लॉजिस्टिक्स कॉस्ट विल ड्रॉप टू 9% बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, सेज यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी। एंड दैट्स इट इन दिस एडिशन ऑफ मार्केट मंत्रा। फॉर नाउ, गुड बाय। Market Mantra.